आज जो हमारा विषय है खासतौर से चर्च डिसिप्लिन, हमारा जो मेन थीम है चर्च डिसिप्लिन, पाप का सामना करना है। या तो इस बात को इस प्रकार से कह सकते हैं, वॉकिंग इन हम्बलनेस, नम्रता से चलना, न्याय करना, डूइंग जस्टिस, और लविंग एंड मर्सी, प्रेम और दया, तीनों चीज। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो इस तीनों चीज इसमें दिखाई देती है। हम नम्रता के साथ चलते हैं एक दूसरे साथ, हम न्याय की भी बात करते हैं, और इसके साथ साथ हम प्रेम और दया की भी बात करते हैं, क्योंकि ये परिवार है। और अद्भुत लगता है जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार में केवल एक सुसमाचार है, वो मती का सुसमाचार है, जिस मती के सुसमाचार ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस ड्रीम को या अपने उस विजन को, अपने उस दर्शन को, वो दर्शन जो उसका सृष्टि से पहले था, द विजन विच जीसस हैड बिफोर द क्रिएशन, उसने उस दर्शन को रिवील किया, उसने दर्शन को खोल कर बताया, और वो दर्शन उसका कलीसिया था, वो विजन उसका कलीसिया था। और इसीलिए जब मती के सुसमाचार में हम आते हैं तो मती 16 अध्याय, मती 17 अध्याय और मती पुस्तक में 18 अध्याय, तीन अध्याय जो कलीसिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। 16 अध्याय में कलीसिया की उद्घोषणा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द चर्च इन 16 चैप्टर, कि कलीसिया परमेश्वर कैसे बनाएगा, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपनी कलीसिया को बनाएगा। 16 अध्याय में उसका आधार क्या होगा, उसकी फाउंडेशन क्या होगी, इसकी नींव क्या होगी। 17 अध्याय में कलीसिया की महिमा क्या है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की महिमा है 16 अध्याय में। और फिर 18 अध्याय में डिसिप्लिन इन द चर्च, कलीसिया में अनुशासन। ये तीन मुख्य विषय है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में दिए। और हम जानते हैं जब मती के सुसमाचार को हम पढ़ते हैं तो मती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह एक राज की बात करते हैं, और हम बार बार करते हैं जब राज है तो उसमें राजा होगा, प्रजा होगी, नियम होंगे। परमेश्वर का राज जिसको स्थापित करने के लिए प्रभु आया, और परमेश्वर ने अपने उस राज को इस पृथ्वी पर स्थापित किया है, वो राज उसकी कलीसिया, वो किंगडम उसकी जो स्वर्गीय राज है उसकी कलीसिया है, ये भेद है, और उसको उसने प्रकट किया है। तो जब हम आते हैं तो आज हम खास तौर से 18 अध्याय में जाएंगे, समय का ध्यान रखते हुए। जब मैं बोलने लगता हूँ, पढ़ने लगता हूँ तो लंबा चला जाता हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक लगाना अपने आप को, स्वयं को। आइए 18 अध्याय उसके 10 पद से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। तो जो आज हम विषयों को लेके चल रहे हैं, कलीसिया में अनुशासन, डिसिप्लिन इन द चर्च, और उसमें 10 से लेकर 20 पद तक ये कुछ मुख्य बातें हैं। 10 से 14 में सामान्य विश्वासी का मूल्य, वैल्यू ऑफ बिलीवर्स लाइफ। दूसरा है 15 पद से लेकर 17 पद तक कलीसिया में विश्वासी का अनुशासन, बिलीवर डिसिप्लिन इन द चर्च, 15 से 17 तक। 18 से 20 तक कलीसिया में यीशु द्वारा अधिकार, थ्रू जीसस क्राइस्ट इन द चर्च। ये तीन बातें हैं जो हम 10 पद से लेकर के 20 पद तक हम बहुत ही सुंदर रीति से देखते हैं। तो जब हम 10 पद से पढ़ते हैं, देखो तुम इन छोटे में से किसी एक को भी तुच्छ ना जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सर्दा देखते रहते हैं। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ पे छोड़कर उस एक को ढूंढने न जाएगा जो भटक रही है? और यदि ऐसा हो कि वो उसे पा ले तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसके लिए उन 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। अतः तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है ऐसी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से कोई एक भी नाश हो। ये परमेश्वर की इच्छा कलीसिया के बारे में, कलीसिया माँ जो हम सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, चर्च के मेंबर्स हैं, वो परमेश्वर उनको एक भेड़ों के रूप में देख रहा है, परमेश्वर का वचन। और वो कहता है इस भेड़ में 100 में अगर भेड़े हैं तो 100 में से एक भी ना खोने पाए। वो नहीं चाहता कि एक भी, उसके लिए एक भेड़, वन शीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीसस क्राइस्ट, एक भेड़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और इसलिए जब आप कलीसिया में हैं, मैं और आप, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं और आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए जो कलीसिया के पास्टर हैं, सेवक हैं, सर्वेंट हैं, जो भी आप कह लीजिए वो हैं, उनकी भी एक चरवाहे के रूप में, शेपर्ड के रूप में, उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि उस एक भेड़ के लिए भी वो चिंतित रहे और परेशान रहे, जागृत रहे। तब वो आगे चल करके कुछ और वर्णन करता है। यहाँ कहता है एक भेड़ बहुत मूल्यवान है, एक भेड़ भी खोई ना जाए। कब, पिछले दिनों में मेरे से एक भाई बात कर रहा था, और बात करते हुए कहने लगा, अंकल पिछले दिनों में कई लोग यहाँ कलीसिया में थे और वो चले गए, क्या हम खुद उनको दूसरी बार अप्रोच कर सकते हैं, क्या उनके साथ संपर्क हम कर सकते हैं? मैंने, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं उनसे कहा कि आप इस हफ्ते से उनको कांटेक्ट करने लगे, हम नहीं जानते, हो सकता प्रभु उनमें से किसी को वापस लिया है। ये अच्छा विचार है, और हमें सोच रहा है जब आप यहाँ पर आते हैं, क्या आप किसी दूसरी भेड़ के बारे में, कलीसिया के दूसरे सदस्य के बारे में, कलीसिया के और भाई बहन के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं जो नहीं आया, या आप आते हैं और मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं हफ्ते भर, या उसके बारे में सोच के फोन करके बात करते हैं। आपके पास अधिकतर मेंबर्स डायरी हैं, उसमें सबके फोन नंबर लिखे हुए हैं, पूछते हैं। एक रिलेशनशिप, एक संबंध जो है वो बहुत गहरा संबंध है। और तब प्रभु यीशु मसीह उन बातों को बताते हुए तब आगे चल करके 18 अध्याय के 15 पद से, ये कलीसिया के सदस्य कौन है, कलीसिया के चर्च के मेंबर कौन है, वे कैसे इस कलीसिया में सदस्य बने, क्या मसीह परिवार में जम लेने के कारण, क्या कुछ रीति विधियों को पूरा करने के द्वारा, नहीं, कोई रजिस्टर में नाम लिखवाने के द्वारा, नहीं। वो एक अलग चीज है, जो हम फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, वचन लेते हैं, वो एक कलीसिया रीति से, लेकिन वास्तव क्या है, आप जितने फॉर्म कर लें, मैं और आप कुछ भी हो, लेकिन अगर मैंने और आपने जब तक यीशु मसीह के सच्चे सुसमाचार को सुना ना हो, जब तक यीशु मसीह के सुसमाचार को समझा ना हो, जब तक सुसमाचार को ग्रहण ना किया हो, उस पर विश्वास ना किया हो, और उस सुसमाचार को सुनकर, समझकर, ग्रहण करके, अपना कर, उस सुसमाचार का आदर ना किया हो, परमेश्वर के वचन का आदर ना किया हो, उसके अनुसार कदम ना बनाया हो, हम कलीसिया के सदस्य नहीं बन सकते। सो प्रभु का धन्यवाद। अब सुसमाचार क्या है, मुझे बार बार, हम यहाँ पुलपिट पर से बार बार सुसमाचार को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसको हम टाल नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए, मैं बार बार कहता हूँ, सुसमाचार यीशु मसीह का जीवन है, गॉस्पल इज जीसस लाइफ, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु है, गॉस्पल इज जीसस डेथ, तीसरे सुसमाचार क्या है, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह प्रोत्थान है, गॉस्पल इज जीसस रिजरेक्शन, अपने जीवन को प्रदर्शित करना, जीवन को, अपना जीवन को संसार के सामने रखना, आपके सामने, जो उसकी सेवाएं रही, उस जीवन में जो उसकी शिक्षाएं नहीं, उस जीवन में जो उसका आदर्श रहा, उस जीवन में लोग, संसार के लोग मुझ पर, आप पर उंगली उठा सकते हैं, क्रिश्चियन पर उंगली उठा सकते हैं, ये क्रिश्चियन ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हैं, लेकिन क्राइस्ट पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं इस बात को चुनौती देकर कहता हूं, मुझ पर, आप पर, हम मनुष्य हैं, और किसी भी रीति से, कुछ अच्छे रीति से उंगली उठाते हैं, कुछ गलत रीति से उंगली उठाते हैं, कुछ अपनी भावना में आकर उठाते हैं, कुछ सत्यता को नहीं जाने कारण उठाते हैं, वो अलग कारण अलग अलग, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष रहा, उसका एक जीवन है, उसने अपने जीवन को संसार, ये सुसमाचार है, उसका जीवन है, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। कौन किसी व्यक्ति के लिए अपने आप के प्राणों को दे सकता है, दूसरों ने दूसरों के प्राणों तो ले लिए, लेकिन केवल यीशु मसीह था जिसने अपने प्राणों को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान किया है। अगर आप कहते हैं ये कहानी कथा का मिथ्या है सब कुछ है, तो इतिहास को खत्म कर दीजिए। क्यों ये बीसी और एडी बन गया है, कहां से बन गया, संसार ने इस इतिहास को ईसवी और बीसी को स्वीकार किया है, ये यीशु मसीह से आरंभ हुआ, वो सत्य है, उसका इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं एक व्यक्ति यीशु मसीह का इनकार करता है, लेकिन सुबह प्रतिदिन अपने सर को उसके सामने झुकाता है। आप कोई भी पत्र लिखते हो उसमें डेट डालते हैं, कोई भी करेंसी लेते हैं उसमें डेट रहती है, क्यों, ये इतिहास सत्य है, सच है, इसको समझना है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित प्रभु है, उसका पुनरुत्थान, वो आएगा, उसके वचन सत्य है। आज से हम बार बार सुनते हैं दुनिया नाश होने वाली, दुनिया नाश होने वाली, दुनिया जरूर होगी नाश, वो समय आएगा। सो हमें सुसमाचार को ना केवल सुनना है, लेकिन उसको समझना है, उस पर विश्वास करना है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो जीवन को प्राप्त करता है। और तब उस सुसमाचार के साथ परमेश्वर मुझे और आपको सौभाग्य दिया है कि हम उस विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य बने, जब विश्वास करके हम बपतिस्मा लेते हैं, ना केवल विश्वास विश्वव्यापी कलीसिया के, लेकिन जब हम स्थानीय कलीसिया में रहते हैं तो उसमें सम्मिलित होकर वाचा को बांध करके प्रतिज्ञा को लेकर उसके हम सदस्य बनते हैं, उसके हम अंग बनते हैं। अब जब हम कलीसिया में आ गए और कलीसिया के सदस्य बन गए, तो हमें इसको समझना है कि हम कैसे उसको आगे बढ़ सकते हैं। जब 15 से 17 पद तक हम देखते हैं, तो हम तीन बातों को देखना चाहेंगे, तीन बातों। पहली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सदस्य के उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, एक कलीसिया के सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। दूसरा बात, एक कलीसिया का सदस्य का रिस्पॉन्स, नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी बट रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर। तीसरी चीज, एक कलीसिया के सदस्य का समय के अनुसार रेस्टोरेशन, उसको पुनः वापस ले लेना। जब हम तीन पदों को देखते हैं तो तीन चीजें इसमें दिखाई देती हैं। पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, दूसरी चीज रिस्पॉन्स, प्रत्युत्तर, तीसरी चीज रेस्टोरेशन, वापसी या पूर्व व्यवस्था के में प्राप्ति। लेकिन जब अनुशासन की बात होती है, तो अनुशासन हम किसी भी रीति से रेट्रीब्यूटेशन के साथ नहीं करते, या मतलब, या कह दीजिए बदले की भावना से नहीं करते। इसको हमें समझना है, एक कलीसिया में जब सेवक और पास्टर और एल्डर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी है एल्डर पास्टर और उनकी जिम्मेदारी, हम बाद में कभी और डिटेल में जाएंगे, लेकिन मुख्य तीन बातें, एक एल्डर या पास्टर या चरवाहे की जिम्मेदारी कलीसिया में क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि एक दूसरे को पवित्र बनाए, उसकी पवित्रता में उसको बढ़ाना है, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, सम्मति के द्वारा, सलाहों के द्वारा एक दूसरे को सिद्धता में बढ़ाएं, परफेक्शन में सिद्धता में बढ़ाना है, एक दूसरे को प्रेम और मेल में बढ़ाना। ये सेवक की जिम्मेदारी है कि जब कलीसिया में परिवार में 10, 50, 100, 200 लोग हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन विश्वास करके हम प्रभु में आ गए, तो हमें उन सारी दीवारों को दूर करना है, उनकी शिक्षा में, उनकी मेहनत में, उनकी प्रार्थना में, उनकी काउंसलिंग में, उनकी सारी चीजों में ये प्रयास होना है कि वे एक एक सदस्य एक दूसरे को पवित्रता में बढ़ सके, एक दूसरे के साथ सिद्धता में बढ़ सके, एक दूसरे के साथ प्रेम में बढ़ सके। यदि सदस्य परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता तो ये उसका पाप और उसका घमंड है। अगर एक सदस्य परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता तो ये उसका पाप और घमंड हो सकता है, ये उसकी अनाज्ञाकारिता हो सकती है, ये उसकी आत्मिक सिद्धता की बढ़ोतरी नहीं है। हट्टीपन में, घमंड में, अनाज्ञाकारिता में जो पाप है वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेगा, तिरस्कार करेगा। कौन कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं? ओ मूर्ख ने कहा यहोवा परमेश्वर है ही नहीं, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। एक बार कुछ साम्यवादी लोग थे और वो बच्चों को भीड़ में सिखा रहे थे, उनकी क्लास ले रहे थे, तुमको बोलना है परमेश्वर है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो, और परेशान होकर पढ़ाते पढ़ाते खैर आखिर में बच्चे सीख गए। जब बच्चे सीख गए और उसने उन्हें बोलना शुरू करा तो यही कहने लगा, ओ थैंक गॉड There is no God. Thank God, क्योंकि इतना थक गया था सिखाने के लिए, जब सीख गए बच्चे तो उसके मुंह से क्या निकल रहा है? Thank God. आप किसी भी रीति से परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि आप माँ के गर्भ में कैसे पड़े थे? क्या आप जानते हैं ये हवा कैसे बनी थी? ये कहाँ से आती है? क्या आप जानते हैं पानी क्या है? क्या जानते हैं सूरज क्या है? आप क्या वैज्ञानिक कितनी खोज करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जीवन को सब कुछ को खोज नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो सच्चाई है। परमेश्वर के बारे में हमें समझना है, और इसलिए ये हमारा घमन, हमारी अज्ञानता, हमारी अनज्ञाकारिता जो हमारा पाप परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करवाना सिखाती है। जब आप विश्वासी हैं और कलीसिया में सदस्य हैं और कलीसिया में आप जोड़े हैं, आपके अंदर ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु हमें अपने वचन का आदर करना सिखाइए। ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करिए कि मैं आपके वचन का और अधिक आदर कर सकूं, मुझे समझ दीजिए कि मैं आपके वचन को समझ सकूं और उसको पालन कर सकूं। प्रत्येक सदस्य जब कलीसिया में होता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? पहली जिम्मेदारी, प्रत्येक यीशु का सम्मान करे, प्रत्येक वचन एवं शिक्षा का सम्मान करे, प्रत्येक सेवकों का सम्मान करे, प्रत्येक आपस में एक दूसरे का सम्मान करें। चार बातें मैंने आपके सामने बहुत लिस्ट बांसते हैं। एक सदस्य की जिम्मेदारी, अभी मैं केवल भूमिका आपके सामने ला रहा हूं, अभी मैं इस स्थल पर नहीं आया हूं, अभी आऊंगा मैं इस स्थल पर। पहली बात, एक उत्तरदायित्व, एक मेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को आदर देना है, टू ऑनर हिज टीचिंग एंड हिज वर्ड, उसके वचन का और उसकी शिक्षाओं का आदर करना है, टू ऑनर द सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक का आदर करना है, टू ऑनर टू ईच अदर, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का आदर, हमें एक दूसरे का आदर करना सीखना है। हमारी भाषा बदल जाती है, यहाँ पर जितने बच्चे रहते हैं वे अभी तभी करके बात नहीं करते, मुंह से अपशब्द नहीं निकालते, अशुद्ध बातें नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान करते, ये सम्मान करना है। हम ऑफिस में कहीं भी हैं, हमें सीखना, कौन सिखाता है? परमेश्वर का वचन सिखाता है, ये कलीसिया का अनुशासन है, हम इस बात को सीखते हैं, और जब हम इसे करते हैं ये हमारे जीवन का है। कहीं भी है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, बने आपकी भाषा में परिवर्तन होना है, आपके स्वभाव में परिवर्तन होना है, आपके बोलचाल में बदलना है। हम एक गीत गाते थे यूथ में जब थे, थिंग्स आई टू डू आई डू देम नो, प्लेसेस आई टू गो आई गो देम नो, सॉन्ग आई टू सिंग आई सिंग नो मोर, इस तरह से एक गीत था जो हम यूथ में बहुत गाया करते थे, कि जब से प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आया वो प्रभु ने हमें बदल दिया, बदल गया। वो गीत जो पहले हम गाते थे अब नहीं गाते, जो बातें हम पहले बोलते थे अब नहीं बोलते, जो स्थान जो पहले हम जाते थे अब नहीं जाते, ये सारी चीजें मुझे मालूम है। मैं जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मुझे पिक्चर देखना बहुत शौक और बहुत जगह था, और ये कॉम्पिटिशन लखनऊ में लगा हुआ था, लेकिन जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया जाना था, मैंने, मेरा मित्र था, कह लगा वहां जाना, मैंने कब, मैं नहीं जाऊंगा, टिकट फाड़ दिया उसने, गुस्से में आ गया, लेकिन और भी थी, नशा करने की आदत थी, प्रभु ने छुड़ाई। हम उन चीजों को नहीं करते, प्रभु ने बदला है, प्रभु ने बदला, हम अपनी शक्ति में नहीं करते। ये हमारे मसीह होने के नाते, कलीसिया में होने के, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है एक सदस्य की। हमारे शब्द बदल जाते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम छल नहीं करते, हम धोखा नहीं देते। अगर हम धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमारे अंदर पाप है, हम ये नहीं करते। और बहुत सारे लोग झूठ, छल, धोखे में जीवन व्यतीत करते हैं, हमें समझना है, हमें डर का जीवन व्यतीत करना है। जब हम सदस्य की बात थे, क्यों हम कलीसिया के, ना केवल परमेश्वर ने स्थानीय कलीसिया के लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य बनाया है। अगर हम स्थानीय कलीसिया के सदस्य हैं, हम आपस में किस रीति से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, हमको सीखना है। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कलीसिया में अनुशासन क्यों? क्यों कलीसिया में अनुशासन की आवश्यकता है? Why discipline is important in the church? क्यों कलीसिया में अनुशासन की आवश्यकता है? मैंने पहले कहा, जिस परिवार में अनुशासन नहीं है, जिस ऑफिस में अनुशासन नहीं है, जब मर्जी आए जब मर्जी चले गए, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो, अनुशासन नहीं, क्या होगा वहां? आप जानते हो। लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी है ताकि परमेश्वर के वचन का पालन हो सके, दूसरी ताकि परमेश्वर के वचन का सम्मान हो सके, ताकि कलीसिया द्वारा परमेश्वर की पवित्रता प्रकट हो सके, ताकि कलीसिया की साक्षी बनी रहे, ताकि एक विश्वासी स्वयं पवित्र एवं अनुशासित होकर जीवन व्यतीत करे और दूसरे की भी सहायता कर सके। एक विश्वासी स्वयं पवित्रता में बढ़ता है, दूसरे की भी सहायता करता है वो भी पवित्रता में बढ़े। एक विश्वासी स्वयं प्रेम में बढ़ता है, वो दूसरे की भी सहायता करता है कि प्रेम में बढ़े। एक विश्वासी स्वयं आज्ञाकारिता में बढ़ता है ताकि दूसरा भी आज्ञाकारिता में बढ़े। ये अनुशासन की आवश्यकता है, ये जरूरी है, हम साथ मिलकर करते, और कलीसिया में ये बहुत जरूरी है। और ये जब हम आगे बढ़ते हैं, कलीसिया जब स्थापित हुई थी, कलीसिया जब स्थापित, परमेश्वर ने जैसी प्रेतुकाम उसके दूसरे अध्याय में कलीसिया स्थापित हुई, अब थोड़ी देर सुसमाचार प्रचार हो रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, लेकिन वहां पर एकदम से एक ऐसा भयंकर पाप आ गया कलीसिया में, जिसके कारण कलीसिया को परमेश्वर को अनुशासित करना पड़ा। और वो पाप कौन सा था? कौन से अध्याय में? सबसे पहले हम कलीसिया में पाप को देखते हैं। कौन से अध्याय में? कौन से अध्याय में? कलीसिया में सबसे पहले हम पाप को देखते हैं। प्रेतकाम उसका पांचवा अध्याय, प्रेतकाम उसका पांचवा अध्याय। कलीसिया बढ़ रही है, दूसरे अध्याय में कलीसिया की स्थापना होती है, तीसरे अध्याय में लंगड़ा चंगा होता है, चौथे अध्याय में सुसमाचार प्रचार हो रहा, विरोध हो रहा है, जैसे पांचवा अध्याय हनन्याह सफीरा के बारे में आप जानते हैं। क्या हुआ था? क्या पाप था? उन्होंने कलीसिया के गो से क्या बोला था? झूठ बोला, धोखा दिया था, लालच था, छल था, झूठ का पाप था, धोखे का पाप था, लालच का पाप था, स्वार्थ का पाप था, ये पाप। और आपको मालूम है परमेश्वर ने उस समय एक ऐसा काम किया, वो पुरानी व्यवस्था को देखिए, दो बात समझने की कोशिश करिएगा। पुरानी व्यवस्था में जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मार डाला जाए, और यहां पर परमेश्वर ने वही काम किया है। हनन्याह भी मारा गया, सफीरा ने भी मारा गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उसके कारण कलीसिया में प्रकट किया, कलीसिया भयभीत हुई और कलीसिया समझ गई कि उनको पाप के प्रति पाप से सावधान रहना है। उसके आगे हम कलीसिया में भी या लोगों को प्रभु यीशु मसीह द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा मृत्यु का दंड देते हुए पाते नहीं है। अभी परमेश्वर ने मृत्यु के दंड को ठहरा रखा है, लेकिन यह सच है जो प्राणी पाप करो निश्चय मर जाएगा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस बात को देखना है। प्रश्न यह है आगे बढ़ने से पहले, क्या हम पाप को परमेश्वर से छिपा सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ छिपाने की कोशिश करते हैं? एक दूसरे के साथ हम छिपाने की कोशिश करते हैं, क्या पाप को हम परमेश्वर से कभी छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते, कभी नहीं छिपा सकते। किसको धोखा देते हैं? अपने स्वयं को धोखा देते हैं, अपने स्वयं को धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, हम अपने को धोखा देते हैं। क्या हम दूसरे के पाप को देखकर डरते हैं? मान लीजिए कलीसिया में कोई विश्वासी को आपने देखा और उसका कोई पाप, अभी हम आएंगे उस आगे बढ़ेंगे, कोई पाप या अनुशासन कुछ भी जो हमने देखा है, उसको देखकर हम डरते हैं, गंभीर होते हैं, अपने आप को सावधान करते हैं, या हम बड़ा हल्के में लेते हैं? ये बहुत जरूरी है। और कलीसिया में इसीलिए, घर में बच्चे हैं, अगर दो बच्चे हैं और एक बच्चे ने गलती करी है, उसने झूठ बोला या उसने चोरी करी और मम्मी पापा उसको डांट रहे हैं, उसको तंबी दे रहे हैं, उसको अनुशासित कर रहे हैं, और दूसरा भाई या बहन उसको देख रही है, तो उसकी क्या रिएक्शन होता है? या तो वो डरेगा और डर के मारे वो सोचेगा मुझे ऐसा नहीं करना है, ये चीज उसके जीवन के सुधार का कारण बनेगी, या वो ठीक है इसने कर लिया तो पकड़ गया, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगी, फिर ठीक है मैं करता हूं, ये क्या करेगा उसके जीवन के लिए? नुकसान का कारण बनेगा। वो डर उसके जीवन के निर्माण का कारण बनेगा, वो बनाने का कारण बनेगा। मेरे प्रियो, क्या हम दूसरे के जीवन को देखकर उसके पाप के जीवन को भयभीत होते हैं? पाप से मत खेलिए। पिछले दिनों में मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा था, जब अब हम आएंगे 18 अध्याय के 15 पद में, 18 अध्याय पद में अब हम शुरू करेंगे। यदि तेरा भाई पाप करे तो जाकर उसे अकेले में समझा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक भाई की दूसरे भाई के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सदस्य की दूसरे सदस्य के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलीसिया में यदि कोई भाई कोई बहन अगर कोई गलत कर रहा है, उसको अकेले में बुलाकर समझाना है। क्यों हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम उस भाई से प्रेम करते हैं, उस भाई से, उस बहन से चिंता करते हैं, हम उसकी हानि नहीं चाहते। अरे कर रहा तो करने दो, अपने जाएगा, अपने चलेगा, जो कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम उसको पाप से खेलते हुए नहीं देखना चाहते और इसलिए हम गंभीरता से उसको अकेले में समझाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है यदि तेरा भाई पाप करे, कौन सा पाप? नैतिक पाप होता है जो हमारे जीवन संबंधित है, शायद हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं, शायद हमारे जीवन में कोई व्यभिचार का पाप है, शायद हमारे जीवन में कोई चोरी का पाप है, शायद हमारे जीवन में नशे का पाप है, शायद हमारे जीवन में अपशब्द बकने का पाप है, हमारे बात से, हमारे बोलचाल से, हमारे व्यवहार से, हमारे कार्य से, यहां तक कि जिस रीति परमेश्वर के साथ चलना चाहिए हम उस तरह से नहीं चलते। पाप जीवन को बर्बाद कर देता है। और मैं बार बार बोलता हूं, आप छोटे घुन को जानते हैं? घुन जानते हैं? घुन समझते हैं? लकड़ियों में जो लगता है। आप आजकल तो सब फर्नीचर बदल गए, पहले समय में ये बांध की खटाई खाट चलती थी जिसको बांध से बिना जाता था, या फिर उसके बाद फिर निवाड़ होने लगे और बहुत मोटी पट्टियां रहती थी, लेकिन कई बार उन पट्टियों में अंदर घुन लग जाता और घुन लगते लगते वो अंदर वो कीड़ा क्या करता है, अंदर अंदर काटता है, आपको पता नहीं चला। वो पट्टियां आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ऊपर से पॉलिश है, चिकनी है, लेकिन उसके अंदर कोई घुन है, कोई कीड़ा है जो अंदर अंदर उसको काट रहा है और आपको पता नहीं चला। और आप अचानक से एक दिन आते थके मांदे और उस पट्टिया पे बैठते हैं, जैसे आप पट्टिया पे बैठते हैं क्योंकि घुन उसको खा चुका है, अब उसमें जान नहीं, ऊपर तो बहुत अच्छा चमक रहा है, जैसे आप बैठे फट से आप इसके गिरे, आपकी कमर टूट गई, पक्की दिखाई दे रही थी, सब कुछ था, अच्छा था, चिकना था, बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अंदर क्या था? कई बार मसीह जीवन में कहीं ना कहीं अंदर घुन आ जाता है जो अंदर अंदर रह के काटता रहता है। हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई घुन है जो अंदर अंदर काट। और मेरे प्रियो, अगर उसको आपने नहीं देखा, उसका उपचार नहीं करा, तो वो घुन इसी तरह से कर देगा, वो तो टूटेगा टूटेगा, आपको भी ले डूबेगा, और सादा नहीं है। और इसलिए जब कह रहा है यदि तेरा भाई पाप करे, और मेरे प्रियो जब एक व्यक्ति पाप करता है और अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करता है तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी होनी चाहिए। अभी हम उस पर भी जाएंगे कैसे। पहली बात, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उस भाई को चिताना है, उसके भाई को समझाना है, उसको बताना है, उसके पाप के प्रति उसको सचेत करना है, उसके साथ व्यवहार करना है। अगर वो न करे तो कहता है, क्या कहता है आगे चल के, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। पहली बात, यदि वो तेरी सुने, यदि अपने पाप के प्रति चेत जाए, यदि अपने पाप के प्रति पश्चाताप कर ले, यदि पाप के प्रति क्षमा मांग ले, यदि पाप के प्रति जागृत हो जाए और कह रहे हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने अपराध किया है, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे से अनजाने में हुआ या जैसे हुआ, यदि उसने ऐसे कर लिया तो उन्हें अपने भाई को पा लिया है, वो खोया नहीं गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पापी को बचाने के लिए आया है, परमेश्वर पापी को क्षमा करने के लिए आया है, परमेश्वर मौका देता है। अगर परमेश्वर मौका देता है तो मैं और आप कौन होते हैं कि उसको मौका ना दें। मुझे और आपको भी उसको मौका देना है, हमें सावधान होना है, हमें सावधान होना। और इसलिए कहता है कि उसने तूने पा लिया। दूसरी बात, तब उसके बाद दूसरा कदम क्या है, यदि वो तेरी ना सुने, यदि तेरा क्यों नहीं सुनेगा, हट्टीपन होगा उसके अंदर, घमंड होगा उसके अंदर, या गिल्टी है, गिल्ट ऐसा होगा या दोष ऐसा होगा जिससे उबरने के लिए उसके लिए मुश्किल होगा, या वो अपने आप को फिर भी धर्मी जताने की कोशिश कर रहा होगा। यदि वो ना सुने, यदि ना सुने, यदि अपने पाप को अंगीकार ना करने तैयार हो, यदि ना मानने तैयार हो, वो कह नहीं मैं ठीक हूं ठीक हूं ठीक हूं, कोई बात नहीं, कुछ छिपा रहा हूं कुछ कर रहा हूं, यदि ना सुने, तब दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये जिम्मेदारी पे हम जा रहे हैं। वो कह रहा है यदि ना, तो अपने साथ एक या दो व्यक्ति को ले जा, पहले अकेले जा, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, ये तरीका है, अकेले जाके उससे बात कर, अगर तूने उसे पा लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसे पश्चाताप कर लिया, आप उसे प्रार्थना करिए, उसको समझाइए, उसको आपने निकाल लिया, उसको आगे बढ़ने का आनंद आशा दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर नहीं तब अपने साथ दो या तीन गवाहों को ले जा। ये व्यवस्था के अनुसार था, पुराने नियम में था, अब मैं पुराने नियम में नहीं जा रहा हूं, लेकिन पुराने नियम में जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में कई जगह, और यही चीज तिमोथियुस भी बात को कहता है, बिना दो गवाहों के किसी बात को ना सुना, तिमोथियुस भी कहता है, पहला तिमोथियुस का 5 अध्याय उसका 19 पद में वो कहता है। तब आके कल के दूसरी बात, तीसरा, अगर तब भी वो गवाहों को पुष्टि हो, यदि वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, यदि वो कलीसिया की भी ना सुने तो तेरे लिए अन्य जाति के कर वसूल लेने वाले के समान ठहरे। यदि कलीसिया की स्टेप्स है, कदम है, पहले अकेले जाना है, फिर दो तीन लोगों को जाना है, फिर कलीसिया से कहना है, कलीसिया के साथ बात करनी है, और उसके बाद, अर्थात क्या मतलब है, तेरा प्रयास पूरी रीति से इस प्रकार से रहे, किसी ना किसी प्रकार से तेरा भाई तेरी बहन जिसके जीवन में पाप आया है वो बच जाए, उसे छुटकारा पा जाए, वो निकल जाए, वो आगे बढ़ जाए और उससे निकल करके, क्योंकि अब वो कलीसिया का सदस्य बन गया, परिवार का अंग बन गया है, परिवार का हो गया है। अभी इतनी जल्दी, हमने पिछले दिनों में काटा था, वो डाली जो काटी जाती है, वो काटना ना पड़े उसको, वो डाली उसी में जुड़ी रहे, फलवंत हो सके। छटनी हो सकती है, छटाई हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन छटनी द्वारा फलवंत होगा, कटना नहीं चाहिए। और ये अनुशासन जो आखिरी अनुशासन है, वो काटने वाला अनुशासन, कलीसिया से बाहर करने वाला अनुशासन। लेकिन नहीं, बाइबल ऐसी नहीं चाहती, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, परमेश्वर और कलीसिया ऐसी नहीं। हम आपसे एक आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपराध हो सकते हैं, गलती हो सकती है, क्षमा करने के लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन दोनों चीजें, क्षमा करने तैयार होना है, क्षमा मांगने के लिए तैयार होना है। बाइबल का एक सिद्धांत है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ठीक है, क्षमा करना, कैसे क्षमा करना है, क्या मतलब है क्षमा करने का, क्या मतलब है उसको समझना। प्रभु यीशु मसीह के साथ दो क्रूस पर थे, क्या प्रभु यीशु मसीह ने दोनों को क्षमा किया, क्या दोनों को क्षमा किया, किसको क्षमा किया, जिसने क्षमा मांगी। और लूक का उसके साथ अध्याय किस पद में यही है, यदि तेरा भाई तुझसे क्षमा मांगे, हमें क्षमा मांगने तैयार होना है। हाँ, अगर नहीं मांग रहा है क्षमा मांगने तैयार नहीं रहा, तो मुझे क्षमा करने का मतलब क्या है, मेरा व्यवहार उसके साथ बदले का नहीं होना चाहिए, मेरा व्यवहार उसके साथ संसारिक नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर उसके लिए कड़वाहट नहीं होनी। लेकिन ये सच्ची बात है, हमारी चीजों में, निर्णय में कुछ चीजों में फर्क पड़ेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार रहूं। क्षमा मांगने के लिए झुकना पड़ता है, क्षमा मांगने के लिए नम्र बनना पड़ता है, क्षमा मांगने के लिए विवेक को जागृत रखना पड़ता है। जब तक ऐसा नहीं, आप क्षमा नहीं मांग सकते। और जब क्षमा नहीं मांगेंगे, तो आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होंगी, और आप नकारात्मक में बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए तो यहां पर वो कह रहा है, तो कदम है ये, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य कोई भी कलीसिया का सदस्य खोने ना पाए, जो कलीसिया में है, कलीसिया में, परिवार में, वो खोने ना पाए, अंत तक हम उसको प्रभु के सामने ला सके। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो हम वचन में देख सकते हैं, तीतुस में, गलतियों में, गलती में 6 अध्याय में, यदि कोई भाई निर्बल हो तो उसकी निर्बलताओं को सहो और उसकी सहायता करो, इस तरह से बहुत सारी पद है। हमें प्रयास करना है अंत तक उसे गिरने से बचाना है, मसीह प्रेम में, समझ में, के दायरे में उसे व्यवहार करना है, क्षमा करने में प्रयत्नशील रहना है, दंडित या अनुशासित करना अंतिम कदम है। तब उसके बाद आगे क्या कहता है वो 17 पद में, यदि तो उसकी नकली से सुने अन्य जाति समान, 18 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। 18, 19, 20 पद में ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक कलीसिया को ये अधिकार दिया है, अधिकार दिया है। कलीसिया उसके लिए किस तरह से प्रार्थना करना चाहती है, कलीसिया को क्षमा करने का अधिकार है, कलीसिया को उसको नया बाहर निकालने का भी अधिकार है, कलीसिया को उसको अपने से अलग करने का भी अधिकार। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हर एक से प्रेम करता है, और वो ये कहता है कि मैं फिर कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन किसी विनती के लिए एकमत हो। अब ये ध्यान दीजिएगा, कई लोग इस पद को एक गलत शिक्षा में लाते हैं, वो कलीसिया नहीं है, 2-3 जन से कलीसिया नहीं है, वचन पूरे वचन के द्वारा प्रमाणित होता है। अगर कलीसिया किसी को देखनी है तो इसके बाद आपको पढ़ना है, प्रेरित काम को समझना है जहां कलीसिया की स्थापना हुई, फिर तीमोथियुस को समझना है जो कलीसिया के लिए तरीके बताए गए, तीतुस को समझना है। जब आप इन सारी चीजों को आगे चल के हम तीमोथियुस में जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको समझना है। लेकिन यहां पर 2 या 3 विश्वासी जब किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु उनकी सुन रहा है। यदि तुम में से कोई 2 जन एक मन के हो, तुम्हारे लिए सुन लिया जाएगा। और मैं कई बार परिवारों में इस बात को समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहनों जो विवाहित हैं, यदि तुम में से 2 जन किसी एक बात को एक मन होकर मांगे, और परिवार में पति पत्नी 2 जन एक मन हो सकते हैं, सबसे अधिक बात। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे पास बहुत साक्ष्य है, हमारे पास कैसे प्रभु ने हम दोनों जनों की कितनी प्रार्थनाओं को सुना है, प्रभु के ये बहुत बड़ा अनुग्रह था। और इससे मजबूत पिलर और कोई नहीं होता कि पति और पत्नी एक मन होकर के जीवन को व्यतीत करें और एक साथ प्रार्थना करें, बहुत सारी बातों के लिए जो आगे अलग विषय है। लेकिन आगे चल के कहता है वो, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं, प्रभु की उपस्थिति वहां पर है। क्यों प्रभु की उपस्थिति है यहां पर, क्यों प्रभु की उपस्थिति है, क्यों वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें, उनका सोच क्या है। उनका सोच एक व्यक्ति के जीवन को बचाने का है, 99 भेड़े छोड़ करके एक को खोजने का है, एक को लौटा लेने का है, एक को बचाने का है, एक को वापस लाने का है, एक को संभालने का है। ये है उनका दर्शन उनका बोझ ये और इससे परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि किस रीति से हमें इस बात को तैयार होना है। मेरे प्रिय उद्देश्य है, उद्देश्य व्यक्ति जो पाप में है अपने पाप को पहचान ले, अपने अपराध को पहचान ले, पश्चाताप कर ले, पश्चाताप कर ले, वो पुनः परिवार में सम्मिलित हो जाए। मेरे प्रियो पुनः परिवार में, और परिवार में सम्मिलित होना एक आनंद की बात होती है। परिवार उन सारी चीजों को भूल जाता है। हमारे बच्चे जब गलती करते हैं और सच्चाई के साथ सच्चे मन के साथ आके पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि बच्चों ने क्या पाप किया था, क्या अपराध किया था, क्या है? बच्चे भी भूल जाते हैं, हमारे मम्मी पापा ने हमें ताड़ना दी थी या मारा था या ऐसा करा था, वो भी भूल जाते हैं। क्या होता है, वो सारी चीज अलग होके एक नया संबंध स्थापित हो जाता है। और ये कलीसिया का वो परिवार है, आत्मिक परिवार है। क्यों? क्योंकि ताकि मैं और आप पवित्रता में बढ़ सके, प्रेम में बढ़ सके, मेल में बढ़ सके। ये चीजें संसार में नहीं मिलेंगी भाई, संसार की शिक्षाओं में नहीं मिलेंगी, ये चीजें केवल बाइबल में परमेश्वर के वचन में मिलेंगी, संसार नहीं देगा ये। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो लोगों से प्रेम करता है, जिसने लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया है, जो लोगों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, कसा, दुख सहा, पीड़ा सही, और उसने अपने आप को दे दिया ताकि लोग उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। वो इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो परमेश्वर जीवन को देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है, चिंता करता है, इच्छा रखता है ताकि मेरे और आपके अंदर उसका जीवन हो और वो जीवन कभी ना खोने पाए। मेरे प्रियो, यदि मनुष्य संसार की सारी वस्तु प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि चाहे तो उसे क्या लाभ। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, और यह कलीसिया अनुशासन जीवन के लिए है, मजबूती के लिए है, दृढ़ता के लिए है, सिद्धता के लिए है, पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए, एकजुट होने के लिए, उस परिवार को, उस देह को दृढ़ बनाने के लिए है। उसका अपमान करने के लिए नहीं है, उसका अनादर करने के लिए नहीं है, उसको छोटा दिखाने के लिए नहीं है, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उसका अनादर करते उसको तिरस्कार करने के लिए नहीं है, तुष्ट ठहराने के लिए, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में होकर बांध करके उसको उठाने के लिए। और कलीसिया अनुशासन इसलिए जरूरी है। डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट डिसाइपलशिप, बिना अनुशासन के डिसाइपलशिप नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह का आदर्श था, अगर मैं फिर बढ़ जाऊंगा पुराने नियम में नहीं जाऊंगा दर, तो फिर एकदम से हम यीशु मसीह के आदर्श को देखने पाएंगे। सच है, प्रभु सहायता करे ताकि ये जो अधिकार अंतिम है ये निष्ठा को दृढ़ करता है। यीशु हमारे साथ, यीशु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा मैं तो वो तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो जब तुम्हारे साथ होगा शैतान पराजित होगा, परास्त होगा, परमेश्वर की महिमा मिलेगी, कलीसिया मजबूत होगी, परिवार मजबूत होगा, दृढ़ता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी और परमेश्वर का राज फैलता चला जाएगा। मेरे प्रियो, कलीसिया में अनुशासन की बहुत जरूरत है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब ये मतलब नहीं हम सबको लट मारते रहे, क्या ये नहीं है, लेकिन हमें सावधान होना है। पर यदि आपके साथ कोई व्यक्ति बातचीत करते हैं, भाई और बहन आपसे बात करते हैं, आपके अंदर एक सकारात्मक आत्मा होनी चाहिए, उसको नम्रता से उसको लेना है, शैतान को अवसर नहीं देना है ताकि आप संभल जाए और प्रभु के राज में शामिल हो जाए। मेरे प्रियो, इसलिए कलीसिया की ना केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्स है। जो मैंने कहा उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स है, क्या वो सकारात्मक रिस्पॉन्स कर देता है, और उसके बाद रेस्टोरेशन है। जब वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रत्युत्तर है, तो रेस्टोरेशन ये सदस्य पुनः कलीसिया में मिल जाता है, पुनः वह परिवार में शामिल होता है। और जब परिवार में शामिल होता है तो क्या होता है, एक बेर जब वो आता है, लिखा है 18 अध्याय के इसमें 13 पद में, और यदि ऐसा हो कि वो उसे पा ले तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसके लिए 99 की अपेक्षा जो नहीं खोई थी अधिक आनंद मनाता है। क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। मेरा भाई खो गया था, मिल गया है, मेरा भाई चला गया था, अब वापस आ गया, आनंद मनाया था। एक खोए हुए जीवन को वापस लाने में जो आनंद है, उससे आनंद और कहीं नहीं है। मेरे प्रियो, ये कलीसिया है, ये परिवार है। अगर एक परिवार का एक जन चला जाता है, लोग खाना नहीं खाते हैं, परेशान होते हैं, कहीं रिपोर्ट करते हैं, कहीं ये करते हैं, खोजते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, वही तस्वीर यहाँ पर है। मेरे प्रियो, काश कलीसिया सियोन, तो ऐसी नाम रखा है हमने, सियोन नाम बहुत से, लेकिन ये परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का परिवार, और उस परिवार में परमेश्वर पवित्रता और महिमा जाता है। और इसलिए हम अनुशासन को आदर देते हैं, इसलिए अनुशासन को हम स्वीकार करते हैं, इसलिए अनुशासन को हम प्रेम करते हैं, इसलिए अनुशासन की हम प्रशंसा करते हैं, इसलिए अनुशासन के कारण हम चिढ़ते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, तुच्छ नहीं जानते, तिरस्कारते नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ अपने जीवन को सोचते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, आनंद के साथ आगे बढ़ते हैं। और वो मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, कलीसिया के लिए मजबूती का कारण बनता है। मेरे प्रियो, सच में प्रभु सहायता करें, किस पर हम विचार करें। और ये कलीसिया, अब मैं एक नहीं कह रहा हूँ, कि हम हर दिन हर बात पे सबका लिए अनुशासन, लेकिन यदि समय ऐसा आता है तो उसको सकारात्मक रीति से अपनाइए और परमेश्वर की महिमा में आप आगे बढ़िए। आइए प्रार्थना करें।